તારીખ 9/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 522 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 123
પત્રનો વિષય છે કે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થયા પછી જીવના પરિણામમાં કેવા કેવા પ્રકારે દોષનો નાશ થાય છે અને કેવા પ્રકારે પારમાર્થિક લાભ થાય છે. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષનાની ઓળખાણનું ફળ કેવું મળે છે, કેવું હોય છે, એ વિષય ઉપર આખો પત્ર છે. આમ તો જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થવા પૂર્વે પણ ખાસ પ્રકારની યોગ્યતા હોય તો જ ઓળખાણ થાય છે. એટલે ઓળખાણ થવા માટે પણ જે મુમુક્ષુતાના ગુણ જોઈએ એ ગુણ હોય તો જ ઓળખાણ થાય, અને ઓળખાણ થાય તો એ ગુણમાં વિશેષપણે વૃદ્ધિગતપણું થાય છે. એ કેવા પ્રકારે થાય છે એ વિષય ઉપર આખો પત્ર છે. જીવને જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ થયે તથા પ્રકારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ મોળા પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે. હિન્દીમાં લઈ જીવ કો જ્ઞાની પુરુષ કી પહેચાન હોને પર ઉસ પ્રકાર છે અનંતાનુબંધી ક્રોધ માન માયા લોભ ફિક્કે પડને કા પ્રકાર બનના યોગ્ય હૈ. क्या है कि क्रोध मान माया लोभ जो प्रकृति स्वभाव है वो प्रकृति का मुमुक्षु की भूमिका में अनंतानुबंधी का प्रकार है. वो अनंतानुबंधी की जाति चतुर्थ गुण स्थान में खत्म होती है. જબ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ હોતી હૈ તબ અનંતાનુબંધી મિટ જાતા હૈ. ફિર ભી ક્રોધ માન માયા લોભ કી જો પ્રકૃતિ હો વો અપ્રત્યાખ્યાન વર્ણી પ્રત્યાખ્યાન વર્ણી ઓર સંજલત ઉસ પ્રકાર કી રહે જાતી હૈ, અનંતાનુબંધી નહીં રહેતી. મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં અનંતાનુબંધી જાતી નહીં હૈ કિંતુ વો ફિક્કી પડ જાતી હૈ, કમજોર હો જાતી હૈ, રસ ઉસકા ટૂટ જાતા હૈ, નિરસ હો જાતી હૈ. ઇતના ફરક પડતા હૈ. ઓર વો મોક્ષ કી ભૂમિકા મેં કબ હોતા હૈ કે જ્ઞાની પુરુષ કી પહેચાન હોને પર હોતા હૈ. જબ તક પહેચાન નહીં હોતી હૈ તો પ્રકૃતિ ઉતની ઠંડી નહીં પડતી હૈ. પહેચાન હોને સે ઠંડી પડ જાતી હૈ. ये पहचान का लाभ है. क्यों ऐसा हुआ इसका विचार करें तो ज्ञानी पुरुष का परिणमन में अनंतानुबंधी का अभाव है. ऐसा परिणमन पहचान के काल में दिखने में आता है तो दिखने वाले को भी इसकी असर आती है. परिणमन देख के परिणमन की असर आती है तो उसके परिणाम में वो ठंडापन हो जाता है, जोर नहीं खाते, ऐसा बनता है. और आगे जाकर के अनुक्रम से यह परीक्षणपणा को प्राप्त होती है. और जब यह मुमुक्षु ज्ञान दशा को प्राप्त करेगा तब अनंतानुबंधि का क्षय हो जाएगा, तो उसका नाश हो जाएगा। सत्पुरुष की पहचान जैसे जैसे जीव को होती है वैसे वैसे उसके मताभिग्रह दुराग्रता आदि भाव फीके पड़ने लग जाते हैं, और भी क्या फायदा होता है कि जैसे जैसे पहचान होती है मैंने परिचय होता जाता है, संग में आने से सत्संग में रहने से परिचय होता है, और जैसे जैसे परिचय बढ़ता है तो खुद का मताग्रह और दुराग्रह आदि भाव भी फीके पड़ जाते हैं। मताग्रह में क्या होता है, अभिप्राय, मत माने अभिप्राय, अपना अभिप्राय का आग्रह, उसका नाम है मताग्रह। और दुराग्रह किसको कहते हैं कि जो परिणाम नुकसान करने वाले हैं वो परिणाम का भी आग्रह रहना, वो दुराग्रह है। यानी इस प्रकार का परिणाम में आग्रह रहते हैं, रहता है विभाव, किस विभाव संबंधी, उस आग्रह को दुष्ट आग्रह कहो या दुराग्रह कहो, एक ही बात है। तो ज्ञानी पुरुष के परिचय से जैसे जैसे पहचान बढ़ती है, जीव का मताग्रह दुराग्रह आदि भाव फीके पड़ने लग जाते हैं, और अपने दोष देखने के प्रति चित्त मुड़ जाता है, उसका जो चित्त है लक्ष्य है वो बार बार अपने दोष देखने लगता है। ये तो पहचान होने के बाद इस प्रकार का अपने परिणाम का अवलोकन चालू हो जाता है। ज्ञानी है वो अपने परिणमन में स्वरूप जागृति में खड़े हैं, मैं एक आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूँ, ऐसी जागृति में है। मुमुक्षु देखता है इसकी जागृति, तो अपने परिणाम में जागृति की शुरुआत होती है, तो अपना दोष दिखने में वो लगता है कि अरे मेरे परिणमन में मुझे नुकसान हो रहा है, कैसे कैसे प्रकार के दोष से मुझे नुकसान हो रहा है, पहले तो पता ही नहीं था, कैसे दोष चल जाता था उसका कोई भान नहीं रहता था, तो वो भान में आने लगा, तो सबसे पहले अपना दोष उनको दिखने में आता रहता है। दोष जब दिखने में आता है तो तत्काल इसका फायदा वो होता है कि दोष में जो विभाव रस है वो ठंडा पड़ जाता है। अपना दोष देखने से दोष की ताकत टूट जाती है और दोष है वो फीके पड़ जाते हैं, ये तत्काल फायदा होता है इसका। अपना दोष देखने के प्रति चित्त मुड़ जाता है और विकथा आदि भाव में निरसपना लगता है। विकथा आदि भाव मैंने अप्रयोजन भूत कोई भी बात चलती हो उसमें उसको रस आता नहीं है। विकथा चार प्रकार की होती है जो संसार में लोग फालतू समय बर्बाद करने के लिए करते हैं, जैसे राजकथा, राजकथा मैंने पॉलिटिक्स की कथा, वो राजकारण चलता है, राज चलाने वाले के बीच में चलता है, तो स्टेट लेवल पर भी चलता है और राष्ट्र लेवल पर भी चलता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चलता है। उसकी चर्चा लोग करते हैं, अखबार पढ़ करके या टीवी देख करके उसकी चर्चा में लोग लगते हैं। खुद को कुछ लेना देना तो है ही नहीं, उसको कहते हैं राजकथा। फिर जो है अनेक प्रकार के वैभव की कथा कह होती है, उनके पास वो है, उनके पास ऐसी गाड़ी है, उनके पास वो है, उनके पास ऐसे मकान है, ऐसे वो है, वो है, ये वैभव कथा होती है। और भोजन कथा होती है, अच्छे अच्छे भोजन के संबंध में, इस प्रकार के भोजन बनते हैं, इस प्रकार के भोजन बनते हैं, ताजमहल के होटल में कुक का सैलरी 10,000 रुपया होता है, क्या रसोईया का, रसोई बनाने वाले का इतना तनख्वाह होता है, वो ऐसे बनाता है वैसे बनाता है, भोजन कथा है। ऐसे अनेक प्रकार की फालतू की जो कथा है, वार्ता है, उसको कहते हैं वी कथा। वी कथा मैंने विरोधी कथा, आत्मा के स्वभाव का विरोध करने वाली कथा। ऐसे जितने भी अपने आत्मा के प्रयोजन को छोड़ करके अप्रयोजन भूत विषय जितना भी चलता है, वो सब वी कथा ही है। तो ज्ञानी पुरुष की पहचान होने के बाद प्रयोजन की पकड़ आती है। क्या होता है, ये सबसे बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। जीव धर्म के क्षेत्र में आकर के भी धर्म प्राप्ति में निष्फल जाता है, इसका मुख्य कारण यही है कि इसका अपना प्रयोजन पर लक्ष्य नहीं है। यही कारण से उसको निष्फलता मिलती है या सफलता नहीं होती है। जबकि ज्ञानी पुरुष की पहचान होने के बाद अपना प्रयोजन का दृष्टिकोण है, वो तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, उस पर अच्छी तरह से पकड़ आने लगती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। ऐसा होने से जीव नुकसान से बच जाता है और अपना पारमार्थिक हित का लाभ उसको चालू हो जाता है। एक मुमुक्षु की भूमिका में महत्वपूर्ण फैक्टर खड़ा हो जाता है ज्ञानी पुरुष की पहचान के बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वी कथा आदि भाव में निरस्पणा होता है या जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है। जुगुप्सा मैंने घृणा, उनको तीव्रता से निषेध आता है। जुगुप्सा कब होती है, जोर से निषेध आए ना, तो उसको कहते हैं कि जुगुप्सा हो गई, यानी ऐसी बात चलेगी तो ये क्या कर रहे हो, करने वाले सो डांटेगा, ये क्या नुकसान का धंधा व्यापार करते हो, क्या फायदा है आपको ऐसी ऐसी बातों करने से, क्या फायदा है। तो ज्ञानी पुरुष की पहचान करने के बाद ये फालतू की बातें बंद हो जाती है। जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है और जीव को अनित्यादि भावना चिंतन व चिंतन करने के प्रति बल वीर्य स्फुरण होने में जो प्रकार से ज्ञानी पुरुष के समीप सुना है, इससे भी अधिक बलवान परिणाम से वह पंच विषय आदि में अनित्यता अनित्य आदि भाव दृढ़ करता है, क्या विशेष कार्य करता है। इस सत्संग में ज्ञानी पुरुष के संग में उसने अनित्य आदि भाव भावना का बात सुना है कि ये शरीर भी अनित्य है, संयोग भी अनित्य है, कुटुंब परिवार अनित्य है, जितने भी आत्मा के अगल बगल में जितने भी संयोग है सब अनित्य ही अनित्य है। उसकी पकड़ जितना जितनी होती है उतना दुख बढ़ता है, क्योंकि अनित्य कभी नित्य होने वाला नहीं है। वास्तविक रूप से जो अनित्य है वो अनित्य ही रहेगा, पर जीव पकड़ करने को जाएगा तो वो नित्य होने वाला है ही नहीं, तो दुख होगा इससे। ये बात उसने सुनी है और वो भावना बलवान रूप से वो चिंतन करता है, ऐसा सुना है कि ऐसी भावना दृढ़ता से चिंतन करना। अब सत्पुरुष की पहचान होने के बाद पंचेंद्रिय के विषय का उदय होता है, सामने आता है, पर जब जब वो सामने आता है उसने सुना है इससे अधिक कम नहीं। क्या लिखा है, इससे अधिक बलवान परिणाम से वो अनित्य आदि भाव दृढ़ करता है। ऐसा क्यों हुआ, एक एक बात में बहुत मर्म भरा है कि ज्ञानी पुरुष के पास सुना तो उदय नहीं था,
ट्रैफिक नहीं था,
सुनने को बैठा सुनने के समय में तो उदय नहीं था, तो उस तो भावना का बल उस वक्त थोड़ा बहुत था तो सही, लेकिन जब उदय आया तो अधिक बलवान परिणाम से वो अनित्य आदि भाव दृढ़ करेगा, क्योंकि तो उदय में बात आ गई, पहले तो सुनने में आई थी, तो सुनने में तो वहां भावना सुनते सुनते बलवान किया, अब उदय में तो इससे भी बलवान करता है। देखो उदय में हारता नहीं है, उदय में बलवान करता है वो, ये पहचान का फायदा है। कैसे कैसे गुण होते हैं पत्र में विषय वो चला कि ज्ञानी पुरुष की पहचान होने के बाद क्या क्या होता है जीव के परिणाम में, मुमुक्षु के परिणाम में कैसे कैसे फेरफार होते हैं। इसका अर्थघटन और करते हैं विस्तार से, अर्थात सत्पुरुष मिलने पर यह सत्पुरुष है इतना जान करके सत्पुरुष को जानने के पहले उसके पहले जैसा आत्मा पंच विषयादि के विषय रस परिणाम से परिणमन करता था, रक्त था, रक्त था मैंने रसान्वित था, वैसा रक्त पहचानने के बाद मिलने के बाद वो रक्त रहता नहीं है, वो फर्क पड़ जाता है। इनके पंच विषय के परिणाम के रस फर्क में फर्क पड़ जाता है, पहले के परिणाम में और पीछे के परिणाम में काफी अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ जाता है रस का। ये पहचान से और लाभ हुआ। समयसार में तो ये राग रस को ही बंध तत्व कहा है। समयसार माने तत्व का, तत्व ज्ञान का एक महान ग्रंथ है, कुंदकुंद आचार्य का प्रमाणभूत ग्रंथ है, उसमें नव तत्व का अधिकार चला है, उसमें बंध अधिकार भी चला है। वो बंधाधिकार में बंधाधिकार के प्रारंभ में कहते हैं कि जीव को बंध किस बात का है, क्या कर्म प्रकृति का बंध है, क्या शरीर का बंधन है, नौकर्म का बंधन है, किस बात का बंधन है। तो उसके परिणाम में जो राग का रस है, रक्तपना है, वही बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। पर ये रस के कारण से उसको नया कर्म बंध होता है। दृष्टांत तो बहुत अच्छा मान लिया है कि जैसा कोई मल्ल है, पहलवान है, वो कसरत करने के लिए अखाड़े में जाता है, व्यायामशाला में जाता है। वहां क्या होती है, वहां कहां व्यायाम होता है, जहां रेत हो, बारीक रेत होती है, वहां वो कसरत करता है। तो उनको रेत चौंटती है इनके शरीर पे, क्योंकि वो कभी गुलाट खाता है, कभी लेटता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, और वो क्या है कि कपड़े तो पहनता नहीं है, सिर्फ लंगोट पहनता है, बाकी तो पहनता नहीं है। तो शरीर बदन खुला रहता है पूरा उसका, पहलवान का। तो उसको सारे शरीर में वो रेत से चौंट जाती है। क्यों क्यों चौंटी, कि उसने तेल मर्दन किया था। कसरत करने के पहले क्या किया था, तेल को मालिश किया था, इसलिए ये रेत चौंटी है। कसरत किया इसलिए नहीं चौंटी है, अखाड़े में आया इसलिए नहीं चौंटी है। अगर तेल मालिश नहीं किया तो नहीं चौंटती। तो तेल में क्या गुण है, चिकनाई। तो चिकनापन होने से रेत उसको चौंटती है। वो दृष्टांत से लेकर के सिद्धांत समझाते हैं आचार्य कि जीव में जो चिकनापन है वही कर्म रज का बंधन करने का, बंधन होने का कारण है। जीव के परिणाम में राग की जो चिकनाई है, यही चिकनाई से उसको नया कर्म रज का बंधन होता है। तो राग रस है वही बंध तत्व है। ज्ञानी पुरुष की पहचान होने से ये नया बंध पर असर आता है सीधा। क्यों, कि उसके परिणाम में जो रक्तपना था, वो रक्तपना वैसा नहीं रहता है, पहले था वैसा नहीं रहता है। तो उसका बंधन में फर्क हो गया, नया बंधन में फर्क हो गया। ज्ञानी को तो निर्जरा होती है, लेकिन मुमुक्षु को नया बंधन, बहुत नीरस परिणाम से नया बंधन होता है। और नया कर्म जो निरसपणे से होता है, इस कारण से उनका उदय भी ऐसा ही आएगा निरस। तो उनको ज्ञान दशा में निर्जरा होने में कोई लंबी तो थोड़ी ताकत लगती ही नहीं है। क्यों, कि जो मुमुक्षु भूमिका में नए कर्म बांधे थे वो तो बहुत निरस परिणाम से बांधे थे, तो उसका उदय भी उतना तकलीफ वाला आने वाला नहीं है ज्ञान दशा में। वो फायदा मुमुक्षु की भूमिका में हुआ, किस कारण से हुआ, कि ज्ञानी पुरुष की पहचान होने के कारण से हुआ ये फायदा। हाँ, ऐसे निरसता है उसको अपन दूसरे शब्द में वैराग्य कहते हैं, मुमुक्षु की भूमिका का, यानी उदासीनता भी कहते हैं। तो मुमुक्षु है वो प्रारंभ से ही उदासीनता का क्रम का सेवन करता है। जब पहली वेदना आती है ना, तब से ही उदासीनता चालू हो जाती है। फिर ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है और उदासीनता आती है। फिर स्वरूप की पहचान होती है, उसके पहले स्वरूप की जिज्ञासा होती है और उदासीनता बढ़ती है, और स्वरूप की पहचान होती है तो और उदासीनता बढ़ती है, और स्वरूप का अनुभव होने से तो और उदासीनता बढ़ती है। ऐसे उदासीनता का क्रम है, उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। तो पहले भी आती है और पीछे भी आती है। इसलिए कहा कि पहले जैसा रस था पहचानने के बाद उससे भी अधिक निरस हो गया। उनको क्या लिखा है अर्थात करके, अर्थात सत्पुरुष मिलने पर यह सत्पुरुष है ऐसा जानकर, सत्पुरुष मिलने के पहले जैसा आत्मा पंच विषयादि के में रक्त था वैसा रक्त पहचान के बाद नहीं रहता, ऐसा रक्त नहीं रहता। पहले निरस तो हुआ है और अधिक निरस हो गया, ऐसा कहते हैं। उतना रस नहीं रहेगा और रस निरसपना बढ़ जाएगा। और अनुक्रमे वह रक्त भाव फिक्का पड़ करके ऐसे वैराग्य में जीव आता है, मैंने इसका वैराग्य है वो और बढ़ जाता है। अथवा सत्पुरुष का योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है, इतना विरक्तपना आ जाता है कि आत्मज्ञान करने में जो अवरोध था, राग रस का अवरोध था, वो नहीं रहा। अब देखिए, जीव को आत्मज्ञान अनंत काल से हुआ नहीं, बात तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अनंत काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल से शास्त्र का ज्ञान कर रहा है, अनंत काल से धर्म के साधन भी कर रहा है, जब तप आदि। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानी कहेंगे कि आत्मज्ञान होना बहुत दुर्लभ है, आत्मज्ञान होना बहुत दुर्लभ है। अगर आसान होता तो अनंत काल जाता नहीं इस तरह से, क्योंकि तो साधन तो बहुत किए, वो साधन बार अनंत किए। अब वही ज्ञानी कहते हैं कि सत्पुरुष के पहचान होने पर आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ कहने वाले कहते हैं कि अब दुर्लभ नहीं है, अब तो सुलभ है। लेकिन जीवन में सत्पुरुष की पहचान होनी चाहिए। बस देखो क्या लिखा है, अथवा सत्पुरुष का योग होने पर आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है। योग होना मैंने पहचान होना, वही योग होना है, वरना तो योग योग अनंत बार हुआ है, योग योग के बराबर साबित हुआ, पहचान नहीं हुई तो। और आज बिना पहचान भक्ति करता है कल विरोध करेगा, पता नहीं चलेगा। विरोध करेगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि तो खुद को भान नहीं होती है कि सत्पुरुष कैसे होते हैं। आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं, तथापि कब कब दुर्लभ नहीं, कि सत्पुरुष में उसके वचन में और उसके वचन के आशय में जीव को प्रीति भक्ति होती नहीं, तब तक आत्मविचार भी जीव में उदय आने योग्य नहीं है। क्या होना चाहिए मिलने पर, कि सत्पुरुष के प्रति प्रीति भक्ति आनी चाहिए, इनके वचन मैंने उपदेश के प्रति भी प्रीति भक्ति आनी चाहिए, और उस वचन में जो आत्मकल्याण का आशय रहा है उसमें भी प्रीति भक्ति आनी चाहिए। तीन बात लिया है और तीनों साथ होता है, तीनों साथ होता है। अकेला भक्ति शब्द नहीं लिया है, प्रीति भक्ति लिया है। ये कृपालु देव ये शब्द का प्रयोग बहुत जगह पे किया है, जैसे 194 में किया है कि सत्पुरुष की पहचान होने से सम्यक प्रतीति आती है और अचल प्रेम की प्राप्ति होती है। कैसा प्रेम? अचल प्रेम की प्राप्ति होती है, तब अवश्य अवश्य वो मुमुक्षु जिसका चरणारविंद का सेवन करता है उसकी दशा को प्राप्त, मैंने ज्ञान दशा को प्राप्त होता है। और 254 में क्या कहा आगे जाकर के, कि जीव को मुमुक्षु है पर आत्मस्वरूप की पहचान नहीं होती है, और सत्पुरुष के प्रति उनको परम विनय आना चाहिए, उतना विनय भी नहीं आता है, विनय में कमी रहती है। ये तीन प्रकार के दोष मिटाने का बीजभूत कारण क्या है? कि सत्पुरुष के प्रति परम प्रेमार्पण है, तो शब्द मान लिया है परम प्रेमार्पण, परम अर्पण ऐसा नहीं लिया है, परम प्रेमार्पण, परम प्रेम से अर्पणता यानी प्रेम शब्द। ये शब्द का प्रयोग वो बार बार करते हैं। क्योंकि ये प्रेम बिना भी भक्ति होती है, बहुमान होता है, प्रेम आना एक दूसरी बात हो जाती है। जब ये बात होती है तब ज्ञान प्राप्ति का बीजभूत कारण की प्राप्ति हो जाती है, बीजभूत कारण है। अनंत काल में कोई कमी रही है तो ये बीजभूत कारण की कमी रही है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति नहीं है। जैसे प्रेम है उसका स्वभाव क्या है? समर्पण करना है, सैक्रिफाइसिंग नेचर है, तो कब आएगा? बिना प्रेम ऊंची जाने वाली नहीं है, इसलिए वो लिखते हैं। गुरुदेव भी वो प्रयोग करते थे, और वो 217 में लिखते हैं कि ये कैसी विचित्रता है कि जीव को ज्ञानी के प्रति प्रेम ही नहीं आया अभी तक, ये क्या बात हुई? और सब कुछ किया, भक्ति किया, पूजा किया, समोसरण में जाता है तो भक्ति पूजा नहीं करता है क्या? मंदिर में जाता है तो भक्ति पूजा नहीं करता है क्या? लेकिन प्रेम से नहीं,
प्रेम भक्ति नहीं है,
वो अलग बात होती है। तो कहते हैं कि सत्पुरुष के योग होने के बाद आत्मज्ञान कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं है, लेकिन कब? कि जब तक सत्पुरुष में, उनके वचन में और उनके वचन के आशय में प्रीति भक्ति नहीं होती, तब तक आत्मज्ञान तो नहीं होता, परंतु आत्मविचार भी नहीं होता, उदय नहीं होता। आत्मविचार मैंने आत्म कल्याण का विचार, उसको आत्मविचार कहते हैं। सही आत्म कल्याण का विचार तब होता है, उसके पहले होता नहीं है। और सत्पुरुष का जीव को योग हुआ है ऐसा वास्तव में उस जीव को लगा है, भाष्यमान हुआ है, ऐसा कहना भी कठिन है। वास्तव में ये भी नहीं कह सकते कि उनको सत्पुरुष का योग हुआ है ऐसा उनको खुद को लगा हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। देखो कितनी गहराई से बात लिखा है और पहचान का कितना महत्व दिया है। आगे कहते हैं कि जीव को सत्पुरुष का योग होने पर तो ऐसी भावना होती है, ये टैली करने लायक सब बात है, अपने परिणाम में टैली करने लायक सब बात है, कि जीव को सत्पुरुष का योग हुआ हो तो ऐसी भावना होती है कि अब तक जितने मेरे प्रयास कल्याण के लिए थे ये सभी निष्फल थे। ये भावना होती है कि अभी तक मैंने काफी प्रयास किया मेरे आत्म कल्याण का, ये सब गलत थे, निष्फल थे, कुछ होने वाला नहीं था। अभी पता चलता है कि मैं कहाँ कहाँ भटका, किधर किधर गया, किस किस के पास गया और कैसा निष्फल प्रयास किया, सब पता चल जाता है। ये सब निष्फल थे, लक्ष्य बिना के बाण के बैठे वैसे जैसे थे, जैसे कोई अंधेरे में फायरिंग करता हो। क्या इसका मतलब है? इसका कोई मतलब निशान देख करके बाण लगाना चाहिए या गोली मारनी चाहिए तो निशान देख करके मारनी चाहिए, वरना तो फालतू की जाएगी। ऐसे मेरे प्रयास भी ऐसे फायरिंग इन द डार्क, और कुछ नहीं था, मैंने ऐसा ही किया अब तक। परंतु अब सत्पुरुष का अपूर्व योग हुआ है, उसको क्या लगता है, क्या भावना होती है कि अब तो मुझे सत्पुरुष का योग हुआ है तो मेरे सर्वसाधन सफल होने का हेतु है। अब जो मैं भी करूंगा सत्पुरुष की आज्ञा से मेरे सब काम सफल हो जाएंगे, तो इसका फल आएगा और उसको नजर आता है। तो उसने कहा कि वेदना में आ जाओ, आते ही लगा कि नहीं अभी कोई निर्मलता आती है। वेदना में यथार्थ रूप से कोई आता है तो इसके बाद क्या होता है मालूम है? ये प्रयोजन की पकड़ की शुरुआत वहां से होती है। सत्पुरुष के पहचानने से तो प्रयोजन की पकड़ आती ही है, लेकिन वेदना के बाद ये चालू हो जाता है प्रयोजन का विषय। तो यहां से ही लाभ नुकसान का जो कारण है सफलता निष्फलता में वो चालू हो जाता है बराबर। तो उसको लगता है कि मेरे सर्वसाधन सफल होने का हेतु कारण मिल गया मुझे, अब मेरे सर्वसाधन सफल हो जाएगा। अब तक लोग प्रसंग में रह करके क्या हुआ, संप्रदाय में सब इकट्ठे होते थे, लोक प्रसंग था, तो कोई धर्म प्रसंग नहीं था। क्यों? कि वहां भी इज्जत बढ़ाने की बात हुई, कितना दान दिया मेरी इज्जत बढ़ी, कितना जप तप किया मेरी इज्जत बढ़ी, कितना शास्त्र ज्ञान धारणा किया मेरी इज्जत बढ़ी। बस ये लोक प्रसंग में रह करके जो निष्फल क्या कार्य किया, निष्फल निर्लक्ष मैंने आत्मकल्याण के लक्ष्य बिना, क्योंकि इज्जत बढ़ाने का लक्ष्य हो गया था, निर्लक्ष साधन किए। यह प्रकार अब सत्पुरुष के योग से नहीं करते, यह प्रकार अब सत्पुरुष के योग में नहीं करता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि जहां जहां नाम निकालने की बात है समाज में या संप्रदाय में, वहां मुझे पाप बंधन होता है, पुण्य बंधन भी होता नहीं, तो अपना नुकसान प्रत्यक्ष नजर आने लगता है कि ये तो मैं खुद को नुकसान करता हूं, ये बात कैसे। ज्ञानी तो कहते हैं कि शरीर भी तेरा नहीं, पैसे भी तेरे नहीं, तब इसमें अपनापन करने का कहां सवाल रहा, तो मैंने वो किया मैंने वो किया, ऐसा अपनापन क्यों करता है, ये तो तेरे है ही नहीं। ज्ञानी मिलने पर सब फर्क पड़ जाता है। लोग प्रसंग में रह करके जो निष्फल निर्लक्ष्य साधन किए, यह प्रकार अब सत्पुरुष के योग से नहीं करते हुए जरूर अवश्य अंतरात्मा में विचार करके दृढ़ परिणाम रख करके जीव इस योग को वचन में जागृत होने योग्य है, जागृत रहने योग्य है, और वे प्रकार को भावना करके जीव को दृढ़ करना कि जिससे उसको प्राप्त योग अफल नहीं जाए, इस प्रकार की दृढ़ता मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष के योग से आ जाती है कि अब जो है मैं मेरे हित हित के विषय में जागृत हो जाता हूँ, मेरे अकल्याण के परिणाम कौन से हैं, मेरे कल्याण के परिणाम कौन से हैं, उस विषय में अब मैं जागृत हूँ। अंतरात्मा में विचार करके, इसका मतलब जागृत होकर के दृढ़ परिणाम दृढ़ प्रकार से भावना करके, अभी जो पूर्व योग मिला है और अपूर्व उनके ज्ञानी पुरुष के वचन के योग की भी प्राप्ति, वचन योग की भी प्राप्ति हो रही है, तो उतनी जागृति आती है और उतनी दृढ़ता आती है कि अब मैं यह अपूर्व योग को निष्फल होने दूंगा नहीं, जोर से आता है। और कितने मुमुक्षुओं को तो अंतर से प्रतीति आ जाती है, तसल्ली आ जाती है कि अब मेरा ये अपूर्व योग निष्फल होने वाला है ही नहीं, ऐसा उत्साहित वीर्य वाला होता है। ये सब अच्छी होनहार के सिम्टम्स है, चिन्ह है कि जिसका भविष्य अच्छा होता है उनको कैसे कैसे परिणाम आते हैं, तो वो अपूर्व योग को निष्फल होने देगा नहीं और मेरा ये मैं इसको अफल निष्फल करूंगा नहीं, करने दूंगा नहीं, और अवश्य अवश्य मेरी सफलता होगी होगी और होगी ही, ये विश्वास आ जाता है। और सर्व प्रकार से यही बल आत्मा में वर्धमान वो किए जाता है, क्या करता है, यही बल को बढ़ाता जाता है कि इस योग से जीव को अपूर्व फल होने योग्य है, इस योग से जीव को अनंत काल में नहीं हुआ ऐसा फल होने वाला है, उसको अपूर्व फल कहते हैं, उसमें अंतराय करने वाला। देखो कितना कितना परखा से बात किया है, ऐसा लाभ में अंतराय करने वाले परिणाम कैसे होते हैं कि उसमें अंतराय करने वाले परिणाम मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, मुझे भी मालूम है, तो शास्त्र पढ़ लिया तो समाधान कर लेता है। मैं जानता हूँ, यह मेरा अभिमान, ऐसा अभिमान अंतराय करता है। और कुल धर्म और करते कुल धर्म और कुल धर्म अनुसार करते आए हैं वैसी क्रिया, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पूर्वजों से हमारे घर में तो ये क्रियाएं चालू रही है। ये होता है ना संप्रदाय में प्रतिक्रमण सामायिक, ये हमारे तो हमारे परिवार में तो हमारे दादाजी भी करते थे, पिताजी भी करते थे और घर के सब लोग करते थे, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? ये आत्मकल्याण के अपूर्व लाभ में अंतराय करने वाले परिणाम है। देखो कितनी गहराई से बात को सोची है और पत्र में प्रसिद्ध की है, बहुत गहराई से बात आई है। ऐसा होता है, ऐसे अंतराय के परिणाम होते, जीव छोड़ नहीं सकता। कुल धर्म और करते आए हुए वो क्रिया को कैसे त्याग कर सकते हैं? ऐसा लोक भाई कि त्याग करेंगे तो लोग, अरे भाई आपके कुटुंब में 150 साल से ये होता था, आपने छोड़ दिया, ये कोई तरीका है धर्म करने का? कैसे छोड़ दिया? आप कुल में तो ये परंपरा चली आई है, आपने कैसे छोड़ा? कभी कभी तो अन्य मत का लफड़ा होता है, माता जी को मानते हैं, उसको मानते हैं, उसको मानते हैं, छोड़ नहीं सकते, ये अंतराय है। ऐसा लोग भाई, क्योंकि लोग बोलने लगेंगे, पड़ोसी कहने लगेंगे, सगे संबंधी बोलने लगेंगे, ये अपना कुल धर्म की क्रिया है, नहीं छोड़ सकते अपन, अपने को दूसरा कुछ करना हो उतना सब कुछ करो, लेकिन कुल धर्म की बात को छोड़ो मत। ऐसा लोग भाई, सत्पुरुष की भक्ति में भी लौकिक भाव मैं ज्यादा भक्ति करता हूँ, मेरी भक्ति विशेष है, ये सत्पुरुष है इसकी भक्ति में मैं अग्रसर हूँ, मेरा नाम आगे है, ऐसा लौकिक भाव। और कदापि कोई पंच विषयाकार ऐसा ज्ञानी के ऐसे कर्म ज्ञानी के उदय में देखकर वैसा भाव खुद भी आराधना ये आदि प्रकार है। तो ज्ञानी भी ऐसा करते हैं, हम भी करते, इसमें क्या हो गया? ये अंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, ये सब अंतराय के जो परिणाम है वही अनंतानुबंधी के क्रोधमान माया लोभ के परिणाम सब प्रकार के आगे चारों चार। यह प्रकार विशेष रूप से समझने योग्य है, अपने परिणाम को देख करके यह प्रकार विशेष रूप से समझने योग्य है। तथापि यहाँ पर जितना बन सका उतना लिखा है, हमने तो जनरल बात कर दी है, लेकिन मुमुक्षु को तो अपने परिणाम को देख करके विस्तार से इस बात को समझना कि हमारे परिणाम टैली करके ऐसे ऐसे होते हैं क्या। उपशम क्षय उपशम और क्षायिक सम्यकत्व के विषय में संक्षेप में व्याख्या कही थी, उसको अनुसरण करने वाली त्रिभुवन के संस्मरण में है, मैंने करीब करीब इस बात त्रिभुवन भाई के स्मरण में है, तो वहां से चर्चा कर लेना, ऐसा करके संकेत कर दिया है अंबालाल भाई को। जहाँ जहाँ इस जीव का जन्म हुआ है और जिस जिस भव का प्रकार धारण किया है, वहाँ वहाँ तथा प्रकार के अभिमान में वो भरता है, मैं फलाना फलाना है। जो अभिमान का नाश किए बिना वह देह और देह के संबंध में आने वाले पदार्थों का इस जीव ने त्याग किया है। देह का त्याग किया, संयोग का त्याग किया, लेकिन देह और संयोग का अभिमान किया उसका त्याग नहीं किया, ये गड़बड़ किया। इसलिए अब तक यह ज्ञान विचार करके भव को व्यतीत नहीं किया और वह पूर्व संज्ञा अब भी वैसी की वैसी इस जीव में अभिमान रूप से वर्तती चालू है, वर्तने में चालू है। यही उसको सारे लोग की अधिकरण क्रिया का हेतु कहा है। अधिकरण मैंने आधार लेने का, वहां जन्म लेना, सारे लोक में वो परिभ्रमण करेगा। क्यों? कि जहां जहां जिस भव में गया, पर्याय बुद्धि धारण करके अभिमान किया, उस भव को छोड़ा, देह को छोड़ा, संयोग को छोड़ा, अभिमान को छोड़ा
नहीं, ये भाव मुक्त होने के लिए
तो परिभ्रमण करेगा।
हाँ, भाव मुक्त होने के लिए लिखा है। भाव मुक्त कैसे हुआ जाता है?
हाँ, तो उसमें क्या है कि परिभ्रमण कैसे इसका हुआ है वो लिखा है। इस प्रकार से उसका परिभ्रमण हुआ, भाव से मुक्त नहीं हुआ, द्रव्य से मुक्त हुआ। जो भी विशेष रूप से अत्र लिखने का नहीं बन सकता है और पत्र आदि के लिए नियमित पने के विषय में मैं विचार करूंगा। मैं नियमित रूप से पत्र नहीं लिख सकता हूँ और आपका अनुरोध है कि पत्र तो उत्तर तो हमको नियमित रूप से दिया करो, तो इसका विचार मैं करूँगा अवश्य। इस तरह से 22 पत्र हैं, उसमें ज्ञानी पुरुष की पहचान का क्या फायदा है वो फायदा दिखा करके इस विषय का महत्व को समझाया है।